पिंकेश कुमार की आवाज में बीए प्रथम वर्ष राजनीतिक आंदोलन। नरम दल और गरम दल अर्थात उग्रवादी उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच के अंतर को स्पष्ट करें। उदारवादियों तथा उग्रवादियों के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए डेनियल आर्गोम ने लिखा है कि उदारवादी तथा उग्रवादी दोनों ही दल के लोग मध्यम वर्ग से आए थे। दोनों का उद्देश्य अंग्रेजी शासन का विरोध करना था। दोनों ने भारत में समस्याओं को उठाया, परंतु दोनों दल के चिंतनों में मूलभूत अंतर व्याप्त था। नरम दल के लोग अंग्रेजी प्रजा होने के नाते अंग्रेजी शासन में भाग मांगते थे तथा सामाजिक समानता की चाह रखते थे, परंतु गरम अथवा उग्रवादी दल का मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तथा सामाजिक समता पाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। उदारवादी ब्रिटिश शासकों को सहयोगात्मक रूप अपनाते थे तथा वे अपने कार्यक्रम में याचना प्रार्थना प्रतिरोध की नीति अपनाते थे, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी इतिहास तथा संस्कृति पर विश्वास था। परंतु उग्रवादी विचारक भारत की प्राचीन संस्कृति से प्रेम करते हुए देशवासियों में धार्मिक देश प्रेम विकसित करने पर बल देते थे। नरम दल के लोग इस बात पर बल देते थे कि भारत में अंग्रेजी राज एक दैवी देन है तथा अंग्रेज भारतीय लोगों को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करने की बात करते थे। परंतु उग्रवादी विचारक उदारवादियों के संवैधानिक कदमों की खिल्ली उड़ाते थे तथा उनकी नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा देते थे। उदारवादियों ने याचना प्रार्थना तथा प्रतिरोध की भावना के बदले उग्रवादियों के कार्यक्रमों में सत्याग्रह बहिष्कार तथा स्वशासन तथा स्वशिक्षा पर बल देते थे। उग्रवादी आंदोलन राज्य की पूर्ण समाप्ति के पक्ष में थे, परंतु इसके विपरीत उदारवादी मानते थे कि बहिष्कार से अंग्रेजी राज्य समाप्त नहीं होगा तथा सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेजी शासन के समाप्त होने से देश में अराजकता तथा गड़बड़ी उत्पन्न हो जाएगी। उग्रवादी तथा उदारवादी के बीच के भेद को स्पष्ट करते हुए एडविन वेबर ने कहा है, उग्रवादी तथा उदारवादी एक दूसरे को साथ नहीं रख सकते थे तथा एक दूसरे का साथ छोड़ भी नहीं सकते थे। गरम दल और नरम दल के बीच विवाद अर्थात सूरत फूट पर टिप्पणी लिखें। कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन, जिसमें इस राष्ट्रीय संस्था के दो भाग हो गए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में काले अध्याय के रूप में माना जाता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस की आपसी कटुता तथा वैमनस्य सतह पर आ गया तथा अलग हुए दल का एक गुट गोखले, मेहता इत्यादि के प्रभाव में था और नरम दल कहलाता था, जबकि दूसरा गुट तिलक, लाला लाजपत राय, बीसी पाल तथा अरविंद घोष वाला गरम दल। यूं तो आपसी कटुता बहुत पहले से विद्यमान था। कांग्रेस का एक धड़ा हमेशा से तिलक को अविश्वास की दृष्टि से देखता था, परंतु 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में बंगाल विभाजन संबंधी प्रस्ताव पर दोनों दलों में खुली बहस हुई। नरम दल था गरम दल वालों का लक्ष्य एक ही था, परंतु लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सिद्धांत था कार्य प्रणाली की विभिन्नता उन्हें एक दूसरे से अलग कर रही थी। 1905 में बनारस अधिवेशन में कांग्रेस ने बंगाल विभाजन के विरोध में जो निंदा प्रस्ताव पारित की, उस प्रस्ताव को गरम दल वाले और कठोर बनाना चाहते थे, परंतु नरम दल वालों ने उसका सुझाव अनसुना कर दिया। प्रस्ताव तो पारित हो गया, परंतु गरम दल वाले इससे संतुष्ट नहीं हुए। 1906 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए दोनों गुटों के बीच फिर मतभेद था। उग्रवादी दल अध्यक्ष पद के लिए तिलक अथवा लाजपत राय के नाम पर मुहर लगाना चाहता था, परंतु फिरोज शाह मेहता गुट ने स्वागत समिति से विमर्श किए बिना दादा भाई नौरोजी, जिनका गरम दल वाले भी सम्मान करते थे, को अध्यक्ष पद स्वीकार करने के लिए तार भेज दिया। दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्ष पद स्वीकार भी कर लिया। इस पर उग्रवादी तो सहमत हो गए, परंतु उन्होंने अपने कुछ प्रस्ताव पेश किए। अध्यक्ष पद से दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज घोषित किया, जिस पर गरम दल वालों का प्रभाव स्पष्ट झलक रहा था। कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया, परंतु इसके तत्वों का उल्लेख नहीं किया गया। कलकत्ता अधिवेशन में ही यह तय किया गया कि कांग्रेस का अगला अधिवेशन नागपुर में होगा। आगामी अधिवेशन में अध्यक्ष का चुनाव नरम दल तथा गरम दल के बीच शक्ति परीक्षण के अवसर के रूप में विकसित हुआ। नरम दल वाले तिलक को अध्यक्ष न बनने देने के लिए कृत संकल्पित थे। नरम दल यह तय कर चुका था कि यदि तिलक अध्यक्ष पद के लिए चुने जाते हैं और कांग्रेस पर गरम दल का प्रभुत्व होता है, तो वे कांग्रेस को ही खत्म कर देंगे। अगले अधिवेशन 1907 में नागपुर में गरम दल के संभावित प्रमुख प्रभुत्व से नरम दल वाले निराश थे, अतः फिरोज शाह मेहता ने अधिवेशन का स्थान बदलकर सूरत कर दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि सूरत में वो कांग्रेस अधिवेशन में अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल कर गरम दल वालों को अलग कर सकते हैं। दूसरी तरफ इस निर्णय से तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए अपात्र हो गए, क्योंकि कांग्रेस के संविधान में उल्लेख था कि उस प्रांत का अध्यक्ष नहीं होगा जिस प्रांत में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा हो। तब गरम दल वालों ने लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाने की मुहिम तेज कर दी, परंतु नरम दल वाले प्रतिष्ठित वकील व प्रभावशाली वक्ता रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार थे। एक बार मतभेद पुनः उभर आया, परंतु लाला लाजपत राय ने बुद्धिमत्ता दिखाते हुए अपना नाम वापस लिया। तिलक ने अपनी ओर से एक समझौते का प्रस्ताव रखा। उन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी से मिलकर कहा वे बोस को अध्यक्ष बनाने का समर्थन करेंगे यदि उनके स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा पर प्रस्ताव सूरत अधिवेशन में पुनः समर्थित कर दिया जाए। तिलक ने स्वागत समिति के प्रधान मालवीय जी से मिलने की कोशिश की, परंतु उन्होंने मिलने से मना कर दिया। 21 दिसंबर 1907 को स्वागत समिति के प्रधान मालवीय जी ने तिलक की प्रस्ताव का अनदेखी करते हुए घोषित कर दिया कि वे रास बिहारी बोस अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। तिलक जी ने तुरंत खड़े होकर प्रस्ताव पारित करने की अनुमति मांगी। परंतु प्रधान मालवीय जी ने उनके प्रस्ताव को अव्यवस्थित कहकर नकार दिया। इस बात ने तिलक के अनुयायियों को हल्ला मचाने का मौका दे दिया। आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, कुर्सियां उठाकर फेंकी गई, पगड़ियां उछाली गई, कई व्यक्तियों को चोटें आए। इस हादसे की जिम्मेदारी के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विभाजन पूर्ण हो गया। नरम दल वालों ने कांग्रेस पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। गरम दल वालों ने एक अलग नेशनलिस्ट पार्टी का गठन कर लिया। परिणाम तथा सरकारी प्रतिक्रिया। इस फूट के लिए जो भी जिम्मेदार रहा हो, इसका जो भी कारण रहा हो, परंतु यह तो निश्चित है कि यह देश के लिए एक दुर्घटना थी। इस विभाजन पर महान ब्रिटिश नौकरशाही की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वायसराय लॉर्ड मिंटो ने भारत सचिव मार्ले को बताया, कांग्रेस की फूट हम सब के लिए एक महान विजय है। परंतु मार्ले ने संभावित व्यक्ति कि भले ही इस समय गर्म दल का पतन हो गया है, परंतु अंततः कांग्रेस पर गर्म दलों का आधिपत्य हो जाएगा। इस विभाजन में राष्ट्रीय आंदोलन के क्षितिज पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। यह कहा जा सकता है कि नरम दल कांग्रेस का दिमाग था तो गर्म दल हृदय। नरम दल उसके कानून थे तो गर्म दल उसकी अंतः प्रेरणा। दोनों दलों का मिलजुल कर काम करना कांग्रेस के कार्यकलापों तथा राष्ट्रीय आंदोलन के विकास दोनों के लिए परम आवश्यक था। फूट के लगभग 10 वर्षों बाद तक, जब तक कि गर्म दल 1916 में पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस उस स्थिति में नहीं रहा कि वह सरकार का प्रभावपूर्ण विरोध कर सके। भारत सचिव मिंटो की कांग्रेस पर गर्म दल के आधिपत्य की संभावना उस समय सत्य हुई जब देश निर्वासन के पश्चात तिलक अपने साथियों के साथ पुनः 1916 में कांग्रेस में आए तो कांग्रेस पर नरम दल वालों की पकड़ ढीली पड़ गई। उन्होंने वस्तु स्थिति का पता लगा लिया था। महात्मा गांधी ने भी गर्म दल के सत्याग्रह, बहिष्कार तथा स्वदेशी जैसे कार्यक्रमों को लेकर अपना आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने विवेक व विश्वास तथा न्याय व अंत प्रेरणा के समन्वय पर जोर देते हुए जनता के चिरस्थायी शक्ति का प्रतिनिधित्व किया तथा कांग्रेस को नया रूप देकर उन्होंने फिर से गतिमान बनाया। अतः सूरत विभाजन स्वतंत्रता आंदोलन के गतिरोध के रूप में याद किया जाएगा।